مار گیا کیا؟ تمہارے بچوں کو کوئی مارتا ہے؟ تمہارے کو کھانا نہیں ملتا ہے؟ گلی گلی میں بھٹکنا پڑتا ہے؟ پلاسٹک کھانی پڑتی ہے کیا؟ گائے آج کل پلاسٹک کھا رہی ہے گلیوں میں. مہاراج پریکشت کو دیویہ درشٹی تھی دھرم کو پہچانا, دھرم کے پوچھا, دھرم نے کہا چار چاندوں کے اوپر دھرم کھڑا ہوتا ہے, چار کھمبوں کے اوپر. ست یوگ میں تو میرے چار پاؤں تھے, تین یوگ بیت گئے, تین پاؤں ٹوٹ گئے, کل یوگ میں ایک ہی پاؤں کے اوپر میں چل رہا ہوں. ابھی کل یوگ یہ بھی رہنے نہیں دے گا. تب تک کل یوگ نے کہا مہاراج میں, میرا راج تو شروع ہو ہی چکا ہے, میرے کو رہنے کے لیے کوئی استھان دیجیے. مہاراج پریشت نے کہا کل یوگ تم کو رہنا ہے تو وہاں جا کر رہو جہاں سوراپان ہوتا ہے. سوراپان کا مطلب نشہ ہوتا ہے, شراب آدی. پریشت مہاراج کا کل یوگ کہتا ہے مہاراج آپ کے راج میں تو ایسا میرے کو کوئی استھان نہیں ملے گا, میں بھٹک جاؤں گا, کہاں جاؤں, دوسرا استھان دیجیے. بولا جہاں سنو جہاں پشو ہتیا ہوتی ہے, جہاں کوس گھر ہیں, سلاٹر ہاؤس ہیں, پشو کو مارتے ہیں کھانے کے لیے, وہاں جا کے تم نواس کرو. کل جو مہاراج آپ کے دیش میں تو ایسا استھان نہیں ہے, میرے کو اور استھان دیجیے. تیسرا استھان دیا جہاں ویبچار ہوتا ہے, وواہ سے باہر استری پرش کا سمبند ہوتا ہے, پراسٹیٹیوشن ہوتی ہے, وہاں جا کے تم اپنا نواس کرو. کل جو مہاراج یہ بھی سمبھو نہیں ہے, آپ کے راج میں ملنا مشکل ہے, استھان اور چاہیے. تب تو آپ جوا جہاں ہوتی ہے وہاں جا کر رہو. مہاراج یہ بھی مشکل ہے, ملنا مشکل ہے. تو پھر جہاں دھن کا سنگرہ ہوتا ہے سونے کے روپ میں, وہاں تم اپنا نواس کرو. کل جگ کو یہ پانچ جگہیں پریشت مہاراج نے رہنے کو دی تھی. اور پریشت کے راج میں نہ تو کوئی نشے کا بڑا دکان کہیں تھا جہاں کل جگ اپنا راج جمائے, نہ کہیں مانس آہار کرنے کے لیے کوئی کوس گھر کھلے ہوئے تھے, نہ جوا کھانے کھلے تھے, اور نہ ویبچار کا کوئی استھان تھا. آج کل جگ کا اتنا بول بالا ہے کہ یہ چار چیزیں سر عام دنیا کے اندر ہر شہر میں, ہر نگر میں, ہر گھر کے دروازے کے اوپر کھلی کھلائی دکھتی ہیں اور ملتی ہیں. کہاں کہاں تک کل یوگ نے اپنے پاؤں پاؤں پسارے ہیں, دیکھ لو, کوئی گھر سرکشت نہیں ہے کل یوگ کے پربھاؤ سے. یہ چار چیزیں ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی. نام کیا لکھیں گے شراب خانے کا؟ پرمن صاحب, دیسی اور دیسی اور کیا, انگریزی, انگریزی شراب کا پرمٹ ہے. پرمٹ کا مطلب مر مٹ, مر مٹ. تو مرے گا اور مٹے کا پیسہ بھی تیرا جائے گا, تیرا سوستھ بھی جائے گا, اور گٹر میں گرا پڑا رہے گا. ایک بار پاگل خانے کے سامنے سے ایک آدمی کی گاڑی جا رہی تھی, پہیا پنچر ہو گیا, نیچے اترا, پہیے کے بولٹ کھولے, پاس میں گٹر تھا, سب اس میں گر گئے. دوسرا جب ویل نکال کے لگانے لگا تو بولٹ نہیں ہے, دکھی ہو گیا, کیا گورنمنٹ یہاں گٹر بنا دیا ہے, ہمارے سارے بولٹ چلے گئے. پاگل خانے کی کھڑکی سے آدمی دیکھ رہا تھا, نیچے اتر کے آیا, بولا کیا ہوا؟ بولا بولٹ سارے بہ گئے. بولا ایسے کرو, تین باقی ٹائر میں چار چار بولٹ ہیں, ایک ایک تینوں سے نکالو, تین سے اس کو چلاؤ, گھر جاؤ, کل دوسرے لگانا. بولا تو پاگل ہے, تیرے کو اتنا عقل؟ اس نے بولا میں پاگل ہوں, شرابی تھوڑی ہوں, میں پاگل تو ہوں لیکن شرابی تھوڑی ہوں کہ سارے بولٹ بھی گوائے اور ابھی مورکھوں کی طرح یہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ دھرم چار استمبھوں کے اوپر کھڑا ہے, ستیہ دیا تپسیا اور پویترتا. ستیہ دیا تپسیا اور پویترتا یہ دھرم کے چار استمبھ ہیں. ستیہ کی سماپتی ہوتی ہے دھرم میں. یہ چار چیزیں کب ٹوٹتی ہیں؟ یہ کھمبوں کے اوپر یہ پنڈال کھڑا ہے نا, کھمبا نکالتے جاؤ گے تو پنڈال نیچے آتا جائے گا. پلر کے اوپر گھر کھڑا ہے, پلر ہل گیا تو پوری مکان ہل جائے گا. धर्म चार खंभों के ऊपर खड़ा है। आइए तपस्या को लेते हैं। तपस्या धर्म का वह स्तंभ है जिसको गिराने के लिए नशा है। नशा करने वाला आदमी तपस्या नहीं कर सकता, नशे वाला आदमी तपस्या नहीं कर सकता। दो घंटे बैठना है, अगर आदत सिगरेट पीने की है तो भी बाहर जाएगा, थोड़ा सा धुआं निकालेगा, फिर वापस आएगा, बैठ नहीं सकता। एक रोटी का नशा इतना बड़ा नशा है जिसके लिए 8 घंटे रोज मजदूरी करनी पड़ती है। रोज मेहनत मजदूरी क्यों करते हैं? 2 टाइम रोटी खाने, ये एक बड़ा नशा है। इसके ऊपर एक और नशा बढ़ा दिया तो 2 घंटे और काम करना पड़ेगा, मजदूरी भी और करनी पड़ेगी। और वो नशा, ये नशा कैसा होता है, इस नशे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैमल सिविलाइजेशन, ऊंट का समाज। नशे करने वाले को बोलते हैं ऊंटों का समाज है। क्यों ऐसे बोलते हैं? ऊंट क्या खाता है? कांटे वाले झाड़ खाता है ऊंट, खार भार झाड़ियां जो कांटे होते हैं झाड़ में, उसको ऊंट खाता है ऊपर से। जब ऊंट कांटे वाली झाड़ी खाता है तो उसके मुंह के अंदर कांटे लगते हैं और मुंह से खून निकलता है। जब खून निकलता है, ताजा खून होता है और गर्म खून होता है, और ऊंट समझता है बड़ी अच्छी गर्म ताजी चीज खा रहा हूं, लेकिन खाता क्या है? अपना खून। कांटे वाले झाड़ में कोई न गर्म चीज है, न कोई नमकीन चीज है, अपने खून को खाता है और समझता है कि बहुत बड़ा बहुत से खा रहा हूं। ऐसे नशे करने वाला आदमी पैसा भी अपना गंवाता है, चेतना भी अपनी गंवाता है, परिवार भी अपने को भूखा रख के दुखी करता है, लेकिन समझता है नहीं, मैं बहुत खुश हूं, बड़ा मेरे को मजा आ रहा है, क्या आनंद है। ऊंट की सिविलाइजेशन की तरह अपना सत्यानाश करके, अपना खून बहाकर अपने आप को खुश समझ रहा है, इसको बोलते हैं केमन सिविलाइजेशन। ये तपस्या का सत्यानाश कर रहा है। सुबह उठ के पहले लोग भगवान का भजन करते थे, घंटी बजती थी घर में, आरती का आवाज आता था। अब सुबह किसका आवाज आता है घरों के अंदर? प्लेट और कप का आवाज आता है, ओम जय चाय की प्याली, यह भगवान भूल गया सबको। एक नशे ने इतना हमको बेकार कर दिया, कोई काम नहीं कर सकते। जब तक नहीं मिलेगा तब किसी काम के नहीं। इतना बड़ा आदमी जिसको सर्वश्रेष्ठ भगवान की सृष्टि में अशरफल मखलूक है, सबसे उत्तम प्राणी है, और एक कप चाय का मोहताज है, उसके बगैर उसका दिन नहीं चल सकता है। कितना कितना नीचे गिर गया है, कितना नीचे स्तर के ऊपर आदमी आया आ गया है। जो भगवान को प्राप्त कर सकता था वो कप चाय के लिए बाहर जाके बैठता है दरवाजे के ऊपर कि चाय का एक कप पिला दो हमको। ये नशा तपस्या, और तपस्या तपोदेव्यम पुत्र का आगे कहेगा ऋषभ देव भगवान का अवतार, अपने 100 बेटों को, जिसमें से एक बड़ा बेटा भरत है, जिसके नाम से ये देश भारत कहलाता है। तपस्या करो बेटा, तपस्या से सुख मिलेगा। भोग में रोग है, भोग रोग देता है, तपस्या सुख देती है, दिव्य है। तपस्या करने वाले को ही सुख मिलता है। तपस्या सभी करते हैं, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं 8 घंटे, तपस्या है। घर से बाहर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्त करके आएंगे। तपस्या तो सभी करते हैं, लेकिन दिव्य तपस्या कोई नहीं करता है भगवान को प्राप्त करने की। तो तपस्या की हानि करता है नशा, इस नशे से अपने आप को बचाओ, हिम्मत करो। आपके दृढ़ संकल्प से बड़े से बड़े नशे से आप बच सकते हैं। हमने प्रयोग करके देखा है दुनिया के अंदर, शराब के नहीं नशाई, हीरोइन के नशाई, उससे भी ज्यादा हर नशे में बिल्कुल लिप्त उन लोगों के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है, एक दो नहीं लाखों की संख्या में, केवल भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का प्रसाद उनको दिया, सब नशे उनके छूट गए। और ये हजारों लाखों लोग अभी दुनिया में वो जीवित हैं जो कहते हैं हमारा जीवन नशे के बगैर नहीं चलता था, अब हमारा जीवन भगवान के नाम के बगैर नहीं चलता। केवल भगवान के नाम लेने से नशा छूट जाए तो काहे के लिए ऐसा सस्ता सौदा न कर लिया जाए। फायदा भी डबल है, भगवान भी मिलेगा, नशा भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, पैसा भी बचेगा, परिवार भी सुखी हो जाएगा। दया जाती है पशु हत्या से। दूसरा धर्म का स्तंभ है दया। जब जीते जी को मारता है आदमी तो वो दया नहीं कर सकता, और दया नहीं है तो धर्म समाप्त हो गया। दया धर्म का मूल है। पशु हत्या दया का बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आवश्यकता क्या है पशु हत्या की? मानव के जीवन के लिए अति उत्तम पदार्थ भगवान ने वनस्पतियों के फल सब्जियों के रूप में दूध के रूप में जब पर्याप्त मात्रा में दिए हैं तो क्या जरूरत है किसी पशु की हत्या करने की? और वैसे भी मानव की जो बनावट है उसके दांत की और उसके आंत की वो पशु खाने के लिए नहीं। अभी तो डॉक्टर मेडिकल साइंस में भी कहते हैं कि पेट का कैंसर पशु से होता है, मांसाहार से होता है, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के ज्यादा मात्रा उनमें होती है, क्योंकि वो चीज बनी ही नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी पाश्चात्य देशों के अंदर तो लोग अब पशु आहार से बचकर और शाकाहारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को न जानते हुए भी स्वस्थ के कारण। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा चल रही है। जिस देश में गऊ की सेवा होती थी और पशु को बच्चे की तरह पाला जाता था, वहां पशु हत्या चारों ओर दिखाई दे रही है, उल्टी गंगा चल रही है। इससे दया समाप्त हो गई। दया समाप्त और किसी के ऊपर नहीं हुई, उस दया के समापति का भयानक सबसे रूप यह है कि हमने अपने संतान के ऊपर दया करना छोड़ दी, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने संतानों के ऊपर दया करना छोड़ दी। जन्म से पहले ही उसको मारने का प्रबंध कर दिया। ये मांसाहार का परिणाम है, ये पशु हत्या का परिणाम है। वो जीते मरता है और अपने घर में आने वाले जीव को गर्भ में आने से पहले ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा और कौन सा पाप करेंगे बड़े से बड़ा? भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिटिसाइड। ये परिणाम किसका है? पशु हत्या का। ये अकाल, ये युद्ध, ये सुनामी, ये भूकंप कहां से आते हैं? ये इसको बोलते हैं सामूहिक कर्म। एक कर्म होता है एक व्यक्ति का, एक कर्म होता है सामूहिक राज्य का, और उसका दंड सबको भोगना पड़ता है। पवित्रता जाती है व्यभिचार और पर स्त्री पर पुरुष के संग से, पवित्रता का सत्यानाश हो जाता है, और सत्य जाता है जुआ करने से। चार धर्म के ये स्तंभ ऐसे नाश होते हैं। और परीक्षित महाराज यहां से वापस लौटते हैं, एक दिन घर से शिकार के लिए निकलते हैं। एक दिशा में शिकार के लिए ये जाते हुए अपने सारे साथियों से बिछड़ जाते हैं। बहुत प्यास लगती है, प्यास में व्याकुल महाराज परीक्षित एक ऋषि सम्यक के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि समाधि में है, महाराज का स्वागत ऋषि ने नहीं किया। महाराज को क्रोध आया, महाराज ने मरा हुआ पड़ा था सांप बाहर उसको उठा के सम्यक के गले में डाल दिया। महाराज वहां से वापस लौटे। रास्ते में वापस आते हुए महाराज को पछतावा होने लगा कि मैंने एक ऋषि का अपमान कैसे कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अधर्म का काम किया, हमारा कुल नाश हो जाएगा, मेरे अकेले को इसका दंड मिलना चाहिए। महाराज पश्चाताप करते हुए घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने जाकर सम्यक ऋषि के बेटे श्रृंगी को बोला तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षक मरा हुआ सांप डाल के गया है। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तुम्हारी शक्ति का तुम्हें पता नहीं। श्रृंगी ऋषि ने जल लिया नदी का हाथ में और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, 7 दिन के अंदर तक्षक सांप काटेगा और वो मरेगा। क्या समझते हैं ये राजा हम अपने आप को? हमारे पास आशीर्वाद लेने आते हैं तभी सुखी रह सकते हैं। बेटा वापस अपने घर में आया, पिताजी तो अभी तक समाधि में थे, रोने लगा जोर जोर से। बेटे के रोने के ऊपर पिताजी की समाधि खुली। बेटा रो क्यों रहा है? किसी ने तुम्हें डांटा है, मारा है, अपमान किया है? बोला नहीं, आपका अपमान हुआ है, आपके गले में ये सांप महाराज डाल के गए। उसने सांप को उठा के मारा। ऋषि ने तो फेंक दिया। बोला इसमें क्या हुआ? बोला मैंने राजा को सांप दे दिया है, 7 दिन में मर जाएगा। ऋषि श्रृंगी कहता है बेटा तुम कच्चे हो, तुमने अच्छा काम नहीं किया। ऐसा राजा इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर ऐसा राजा धर्मात्मा नहीं मिलेगा, सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। आपने जो काम किया है इसको हम अनुमोदित नहीं करते हैं बेटा, अच्छा काम नहीं किया आपने। यह सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बात बताते हैं। प्रायः कथा में लोग बताते हैं कि महाराज परीक्षक के सर के ऊपर सोने का मुकुट था और सोने के मुकुट के अंदर कलयुग बैठ गया था, लेकिन न शास्त्र के अंदर और न ही संतों की मत में और आचार्यों के अनुभव में इस बात को माना जाता है। जिसकी जन्म से पहले भगवान रक्षा कर सकता है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। कलयुग ने किसके ऊपर प्रभाव डाला? उन बच्चों के ऊपर जो चारों ओर खड़े थे, उन बच्चों के ऊपर कलयुग ने प्रवेश किया और कच्चे श्रृंगी ब्राह्मण ऋषि के बेटे जिसके पास बल तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी, उसको कलयुग ने अपना पहला शिकार बनाया। तब से क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण के बीच में विरोध चालू हो गया। तब से रक्षक क्षत्रिय शाप के कारण ब्राह्मणों के चले गए बहुत से यहां से, और तब बाहर के लोग यहां आके राज करने लगे, जब क्षत्रिय से हीन ये देश हो गया। और फिर आगे चल के ऐसे ही वैश्यों के साथ किया जिससे जैन धर्म बन गया, अलग हो गए। ये सब कलयुग का प्रभाव ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया। महाराज परीक्षक को क्रोध आए यह भी संभव नहीं है, और प्यास के कारण क्रोध आए यह भी संभव नहीं है। ये तो भगवान ने, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन परीक्षक के मृत्यु को अमर बनाना था, भागवत का अवतार करना था परीक्षक के ऊपर। सम्यक ऋषि को तो उसका कोई फर्क पड़ा नहीं, उसने एकदम अपने शिष्य को भेजा, जाओ महाराज को जाके चेतावनी दे दो कि महाराज मेरे अनजान बालक ने आपको श्राप दे दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सदगति हो। सम्यक का शिष्य परीक्षक के दरवाजे पे पहुंचा हस्तनापुर में। महाराज परीक्षक घर में प्रवेश किया पश्चाताप करते हुए, और इतने में किसी ने संदेश दिया, महाराज ब्राह्मण सम्यक का शिष्य आपके लिए मिलने को बाहर आया। महाराज परीक्षक स्वयं मिलने को आए, शिष्य को अंदर बुलाया। ब्राह्मण को ऐसे नहीं है, ब्राह्मण चाहे शिष्य भी होता था तो राजा उसका सम्मान करके दरवाजे के ऊपर आया, ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा महाराज आपकी सदगति हो, हमारे गुरु सम्यक ऋषि ने संदेश भेजा है कि मेरे पुत्र ने अनजानने में आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन आपके पास जीवन के बचे हैं, आप अपना कल्याण कर लो। परीक्षक महाराज ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं अकेला ही दंड भोगूंगा, नहीं तो मेरा कुल नाश हो जाता। ब्राह्मण का अपराध कुल नाशक है, कुल घातक है, अब तो मैं अकेला इसको सहूंगा। महाराज परीक्षक वहीं से चले गए, वापस घर में नहीं गए। पानी भी नहीं पिया है। अभी प्यास सोची तो पानी पीते ना, पानी नहीं पिया। गंगा जी के तट के ऊपर चले गए सुखताल में। महाराज परीक्षित जैसे घर का त्याग किया, राज का त्याग किया, सारे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया। आज फिर ऋषि आने लगे, अंगिरा आत्री आदि, व्यास भी आया तो नारद भी आया, और ये सारे ऋषि वहां इकट्ठे होकर आके बैठे। महाराज परीक्षित ने कहा, पहले तो बहुत भयभीत हुए कि ब्राह्मण का अपमान किया है, इतने सारे ब्राह्मण बंधु यहां इकट्ठे हुए हैं, कहीं ऐसे न हो कि मेरे को अधम समझ के और मेरा अपमान कर दें। हाथ जोड़ के परीक्षित कहते, महाराज मुझसे अपराध हो गया, ऋषि श्रृंगे का मैं प्यास के कारण अपमान करके आया हूँ। अब तो मैं गंगा के तट के ऊपर अनशन करके जल नहीं पीऊंगा, न अन्न खाऊंगा, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे भगवान श्री कृष्ण विष्णु की कथा बताइए, और फिर मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जिसका मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। अब तो सारे ऋषि कहते, महाराज आप जैसा पांडु वश में ऐसा व्रत धारण कर सकता है, गंगा जी के तट के ऊपर जलपान का त्याग कर हरि कथा सुनेगा, हम यहाँ जब तक आपकी सदगति नहीं होगी हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे और आपके मंगल के लिए हम यहाँ रहेंगे। अब तो परीक्षित ने देखा कि ब्राह्मण मेरे विरोध में नहीं है, तो कुछ लोग कहने लगे कि यज्ञ कराना चाहिए, कुछ रहने चाहिए कि दान तपस्या करनी चाहिए। इतने बीच में नौजवान सांवले रंग का दिगंबर वेश में, कपड़ा एक भी नहीं पहना हुआ है, और पीछे छोटे से बालक और नवयुवक लड़कियां उसको पागल समझ के आ रही है, और उसको जैसे ही देखा सभा में बैठे हुए ऋषियों ने, जैसे ही देखा महाराज परीक्षित ने, नारद और व्यास को छोड़ के सब खड़े हो गए। बच्चे और लड़कियों ने देखा कि हम समझते हैं ये पागल है, 16 साल का नौजवान है और नंगा जा रहा है, लेकिन महाराज भी उठ के खड़े हुए, ऋषि भी उठ के खड़े हो गए, वो तो वहां से भाग गए। महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया, बोला आप जैसे सुखदेव महाराज, आप जैसे महात्मा इस वक्त ऐसे समय में यहाँ मेरे राजा के पास, जब मैं बहुत संकट में हूँ, आए हो, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा हमारे कुल के ऊपर सदा रही है। आज कृष्ण ने आपको हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए भेजा। सबने स्वागत किया सुखदेव महाराज को। कैसे हैं सुखदेव महाराज? जन्म लेते ही कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी और घर से निकल के रवाने हो गए। व्यास देव बड़े पुत्र के वियोग में व्यह में कात्र होके तेरू से पूछते हैं, कहीं आपने यहां से मेरे बेटे को जाते हुए देखा? और पेड़ कहते हैं, अरे वो तो सबको अपनी आत्मा मानता है, वो किसका बेटा हो सकता है? और जाते हुए व्यास देखता है कि एक तालाब के ऊपर स्त्रियां नगन स्नान कर रही है। आगे से सुखदेव नंगा गुजर गया, 16 साल का नौजवान, इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, देखा तो कोई परवाह नहीं की, वो गुजर गया। व्यास पीछे बड़ी उम्र का वस्त्र पहने हुए दादा के समान जावे, स्त्री ने एकदम कपड़ा ढक लिया। व्यास को आश्चर्य लगा, बोला बेटी मेरा बेटा नंगन अवस्था में नौजवान यहां से गुजरा, उसको देख के आपने तो कपड़ा ढका नहीं, मैं आपके दादा के समान, मुझको देखकर आपने वस्त्र क्यों धारण कर लिया? स्त्रियां कहती हैं, नवयुवक आपका बेटा जा रहा था, उसने पेड़ को देखा, पौधे को देखा, पहाड़ को देखा, हमको देखा, जल को देखा, उसके लिए सब समान थे, उसको स्त्री और पुरुष के भेद का पता नहीं था, इसलिए उससे हमको कोई शर्म का तो विचार भी नहीं आया, लेकिन आप गृहस्थी हैं, आपको स्त्री और पुरुष के अंदर भेद का अनुभव है, इसलिए हमने मर्यादा में आपसे कपड़ा ढका। तो ऐसा बड़ा महान त्यागी वैरागी था सुखदेव, जिसको यह भी पता नहीं था कि स्त्री और पुरुष होता क्या। ये सुखदेव तो राधा रानी का तोता है गोलोक में, जो सदा कृष्ण 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 गाता रहता है और राधा रानी को आनंद देता है। ये भागवत शंकर जी से सुन के आया था, भगवान भोलेनाथ सती को भागवत सुना रहे थे अमरनाथ में, वहां इस सुख ने भागवत सुनी थी, लेकिन तोते को अनाधिकारी जाना भागवत सुनते हुए सती तो आंखें बंद करके समाधि में चली गई है। तोता वहां कर रहा था। शंकर जी ने कहा इसको भागवत सुनने का अधिकार किसने दिया? त्रिशूल लेके पीछे भागे। ये तोता व्यास की पत्नी के मुख से प्रवेश किया और बाहर आने को तैयार नहीं है। व्यास ने कहा बेटा तुम आ जाओ संसार में। बोला माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा पिताजी। नहीं नहीं माया तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। और बेटा पूछता है क्या माया आपके अधीन है, आपके बस में? व्यास देव को और रास्ता कोई नहीं सूझा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए। श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव तुम आ जाओ। बोला माया? बोला मेरी माया तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण का मैं मायापति हूँ। माया देक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। ये प्रकृति मेरे आदेश में चलती है, मेरी अध्यक्षता में चलती है, तुम चिंता मत करो। सुखदेव कृष्ण के आश्वासन देने के ऊपर बाहर आया और आते ही चल दिया। व्यास ने कहा मैंने व्यस्त घर इसलिए बसाया था कि वेद शास्त्र और भागवत सिखाऊंगा, कहीं पुत्र शिष्य के समान होता है। आज मेरा पुत्र चला गया, अब क्या करूं? व्यास ने अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाया और कहा कि ये जाके वन में गाया करो। एक दिन वन में गा रहे हैं तीसरे स्कंद भागवत का उद्धव का गाया हुआ श्लोक। पूतना महान राक्षसी छह दिन के छोटे गोपाल को मारने के लिए स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाकर आई, लेकिन दूध पिलाने का संकल्प किया। भगवान ने विष को नहीं देखा, उसको भी धात्री गति दे दी। इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता? मारने वाले को मां का स्थान दे दिया। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद से एकदम छटपटा के बोला ऐसा दयालु कौन है? क्या कौन सा श्लोक बोला? फिर एक बार बोलो। थोड़ी देर के लिए तो आनंद आया, फिर सुखदेव समाधि में चला गया। दूसरे दिन वहां से गुजरते हुए व्यास के शिष्य गा रहे हैं दसम स्कंद से वेणु गीत से ब्रहापीडम नटवर वपु कर्णी कर्णी कारकम। भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बाल के वेश में वैजयंती माला पहन के बांसुरी के अंदर जब धुनी छेड़ता है ग्वाल बालों के संग में, वो उसके रूप की माधुरी को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद को छोड़ के उनके पीछे भागा। और फिर स्वयं सुखदेव कहते हैं मैंने द्वापुर के अंत में मेरे पिताजी से फिर भागवत सीखी। ये कहां से आप सीख के आए? गुरुजी से। गुरुजी को देखा तो अपने पिता को पाया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वहां पधारे तो परीक्षित ने उसको प्रणाम किया, उसके अपने अपने भाग की प्रशंसा की और फिर कहा कि संसार में लोग तो सब माया के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन मृत्यु अब मेरा प्रश्न ये है, उसके दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि सब लोगों का सब समय सब जगह कैसे उधार हो? एक कोई रास्ता बताओ सब लोग सब समय सब जगह अपना उधार कर सकें। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिसका मृत्यु बहुत निकट है उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर क्या देंगे इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। आज पहला स्कंद यहाँ समाप्त होता है। समय आज से थोड़ा ऊपर जा रहा है, इच्छा है तो हम दूसरा स्कंद पूरा कर सकते हैं 15-20 मिनट में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। यहाँ पहला स्कंद समाप्त होता है 19 अध्याय और कल दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज बोलना शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आरती और कीर्तन और प्रसाद। 2 घंटे हो रहे हैं पूरे, 1 घंटा 59 मिनट। 1 मिनट आपके पास है कोई प्रश्न पूछना? किसी कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।